सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पियो लो।
ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सब ने सुना, सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। हमारे मन में, दिल में, श्वास में, संकल्प में, सब में किसका प्यार समाया हुआ है? शिव बाबा का। इसलिए बाबा ने मुरली में भी कहा कि कोई आपसे पूछे कि भगवान कहाँ रहता है तो क्या कहेंगे? भगवान हमारे दिल में रहता है। जब भक्त लोग ये बात कहते हैं कि भगवान हमारे दिल में रहता है तो कैसा लगता है? तब तो हम कह देते हैं कि नहीं नहीं, भगवान परम धाम में रहता है। लेकिन भगवान ने खुद कहा, मैं कहाँ रहता हूँ? भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी आता है कि भगवान योगियों के दिल में निवास करता है। लेकिन फर्क ये है कि भक्ति मार्ग में केवल कथनी है, अनुभव नहीं है। और यहाँ जब हम कहते हैं भगवान दिल में है, तो दिल में उसके होने का अनुभव है। जब हम बाबा के नहीं बने थे तब भी हमारे दिल में कुछ ना कुछ तो था। तो जब हम बाबा के नहीं बने थे तब हमारे दिल में कौन रहते थे? खाली तो नहीं था दिल। तो सबको अनुभव है कि बाबा का बनने से पहले इस दिल में कोई ना कोई संबंधी था। जैसे माँ होगी तो कहेगी मेरा बच्चा मेरे दिल में है। कोई गुरु होगा, उसका बहुत प्यारा चेला होगा, वो कहेगा मेरा तो वो शिष्य मेरे दिल में है। ऐसे करके किसी न किसी संबंधी से ये दिल जुटा हुआ था। लेकिन जब बाबा के बने तो सर्व संबंध एक बाबा से जुट गए और एक बाबा ही दिल में बस गया। तो है तो बाबा एक, लेकिन एक बाबा के साथ हमारे कितने संबंध हैं? भक्ति में कहती हैं भगवान के साथ मनुष्य आत्मा के 108 संबंध होते हैं। अब उस 108 में तो बहुत छोटे छोटे संबंध, बहुत दूर दूर के संबंध भी ले लिए, लेकिन मोटे रूप में तो आत्मा के जो मुख्य संबंध है या देह धारण करके आत्मा जिन मुख्य संबंधों से रोज के जीवन में संपर्क में आती है वो या 7 या 8 इतने ही होते। तो आज हम देखेंगे कि बाबा जो हमारे दिल में है और जिस बाबा के हम दिल में हैं उसके साथ हमारे कौन कौन से संबंध हैं और उन उन संबंधों से बाबा ने कैसे हमारे दिल को जीता है, हमारे दिल को भरपूर किया है। जब हम संसार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला संबंध जुटता है माँ के साथ। इसलिए भगवान की भी जब हम महिमा करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहले, सबसे पहले भगवान हमारी माँ है। जब उसने हमको अपना बच्चा बनाया तो सबसे पहले माँ बन करके हमको अपनी गोदी में उठाया। माँ के प्यार में और बाप के प्यार में अंतर होता है। जब बच्चा अबोध हो, गंदा हो, तो उसको कौन गोदी में लेता है? माँ गोदी में लेती है। और बच्चा साफ सुथरा हो, अच्छा हो, तब गोदी में कौन लेता है? तब पिता गोदी में लेता है। इसलिए बड़ा स्थान किसका? माँ का। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तब हम कैसे होते हैं? 63 जन्मों की मैल हमारे पे लगी होती है, हमें बोलना भी नहीं आता है, भगवान से कैसे बातें करें वो भी हमें समझ नहीं होती है, भगवान की भी अच्छे से पहचान नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे को भी बाबा गोदी में उठाता है, दुलारता है, प्यार करता है, उसकी महिमा करता है। कभी कहता है मेरा राजा बच्चा है, कभी कहता है विश्व का मालिक बनने वाला बच्चा है, कभी कहता है मेरे नैनों का नूर है, कभी कहता है मेरे मस्तक की मणि है। ऐसे कहते 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 बाबा हमारी मैल उतारता जाता है, आत्मा में ताकत आती जाती है और हमको लगने लगता है कि हाँ हम भी कुछ हैं, भगवान की नज़रों में आई हुई आत्मा हैं। तो वो शक्ति आती है, कुछ कर सकते हैं। तो माँ के रूप में बाबा ने हमारे केवल गुण देखे, हमें उठाया और जैसे ही थोड़े से बड़े हुए ज्ञान मार्ग में तो फिर भगवान के पिता रूप में प्रेम की अनुभूति हुई। अब पिता क्या करता है? कहते हैं पिता को बच्चा इसलिए चाहिए कि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो किसको दी। तो भगवान ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया किस लिए? भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी? भगवान के पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो किसको दे। तो उसने हमको बच्चा बनाया। तो भगवान के साथ जब पिता का संबंध जुटता है तो वर्षे का नशा आता है। मैं भगवान के वर्षे का अधिकारी हूँ, उसका जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरा है। मैं बालक सो मालिक हूँ और भगवान ने मुझे पूरा अधिकार दिया है। लौकिक दुनिया में तो क्या होता है, बंटवारा होता है, भले कोई राजा भी हो लेकिन उसकी संपत्ति का भी बंटवारा होता है। अगर उसके पास 4 महल हैं और 4 बच्चे हैं तो सबको एक एक मिलेगा, एक को 4 के 4 तो नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान की प्रॉपर्टी ऐसी ही है, उसमें बंटवारा नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी है भगवान की? संगम युग की। सतयुग की प्रॉपर्टी तो बाद में, लेकिन जैसे ही पिता रूप में हमें वर्षे का नशा चढ़ा तो कौन सी प्रॉपर्टी का नशा चढ़ा? भगवान शांति के सागर हैं तो हम बच्चे क्या हैं? मास्टर शांति के सागर है। उनकी जितनी भी शांति है उस पर मेरा सारा का सारा हक है। ऐसे नहीं कि उसके 9 लाख बच्चे हैं तो शांति को 9 लाख में बांटो और फिर मेरे हिस्से में जितनी आए उतनी मेरी, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे ही भगवान प्रेम का सागर है तो मैं भी मास्टर प्रेम का सागर हूँ। उस सागर का जितना भी प्रेम है उस सब पर मेरा हक है। भगवान पवित्रता के सागर हैं तो मैं भी मास्टर पवित्रता का सागर, उनकी संपूर्ण पवित्रता पर मेरा हक है। तो ये हमको पिता के रूप में भगवान से प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ हमको लौकिक बच्चों से कंपैरिजन करके देखना है कि जैसे एक लौकिक बच्चा अपने पिता की संपत्ति लेने में कितना चुस्त, कितना जागरूक रहता है ना। छोटेपन से बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि मेरे बाप के पास क्या है और मुझे क्या मिलने वाला है। और आजकल तो क्योंकि लौकिक दुनिया में तो बहुत करके संपत्ति किसको मिलती है, बच्चों को मिलती है, भले कानून ऐसा बना है कि बच्चियों को भी मिले, लेकिन व्यवहारिक रूप में तो बच्चे ही लेते ही हैं, बच्चों को ही मिलती हैं। तो जो अमीर पिता के बच्चे होते हैं आजकल ऐसे देखने में आता है, और आजकल तो एक एक बेटा ही होता है, बहुत कम परिवार होंगे जहां दो या तीन हो। तो अगर वो अमीर बाप का बच्चा है तो 10-12 साल की आयु से उसे मालूम पड़ जाता है कि मेरे पिता की इतनी दुकानें हैं, इतना बिजनेस है, इतनी जमीन है, तो वो क्या सोचता है, पढ़ के क्या करूँगा, आखिर तो मुझे दुकान ही संभालनी है, आखिर तो मुझे जमीन ही संभालनी है। तो वो मन से बेमन से स्कूल कॉलेज का चक्कर लगाता है, क्योंकि उसको नशा है कि प्रॉपर्टी तो मुझे मिली मिलाई है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इतनी छोटी आयु में उसको इतना नशा चढ़ता है उस प्रॉपर्टी का कि बेचारा पढ़ता भी नहीं है। कई परिवारों में, सब जगह ऐसा नहीं है, पर कई बच्चों को बहुत नशा चढ़ता है। अब उस लौकिक बच्चे को इतना नशा है हद की प्रॉपर्टी का, एक जन्म की प्रॉपर्टी का, तो क्या हमको भी इतना नशा है कि भगवान का जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरा है? है इतना नशा? और उस बच्चे को आप कहो कि भाई तुम्हारे पिताजी की समझो 10 करोड़ प्रॉपर्टी है, तो चलो तुम 9 करोड़ ले लेना, 1 करोड़ छोड़ देना, तो क्या करेगा, मानेगा? बोलेगा काहे को, पूरी 10 की 10 करोड़ लूंगा। और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो कोर्ट में जाऊंगा, लेके ही छोड़ूंगा, 1 करोड़ भी नहीं छोड़ना चाहता वो। तो क्या हम ऐसे पक्के हैं कि बाबा के पास जितनी शांति है सारी की सारी पर मेरा हक है, मैं क्यों छोड़ूं? अच्छा, मान लो उस लौकिक बच्चे के सामने चोर आ जाए या और कोई छीनने झपटने वाला आ जाए, तो क्या करेगा? घर में आए, वो ट्रेन में सफर कर रहा है उस समय आए, तो क्या करेगा? क्या चोर को यूं ही चुपचाप दे देगा पोटली? देता है कोई बच्चा अपने बाप की प्रॉपर्टी यूं ही? आज तक किसी ने दी? मैं क्या करूं जी, चोर आ गया था और मैंने उसको पकड़ा दी, मैं क्या करूं? आप चोर को रोक देते ना, ना आता। आज तक किसी बच्चे ने ऐसा किया? चाहे कोई आए लेकिन वो प्रॉपर्टी को संभाल के रखेगा, प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा, जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो क्या हम भी, हमारे सामने कोई हमारी शांति का चोर आ जाए तो ऐसा करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी शांति को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे बाप की दी हुई प्रॉपर्टी है, या चुपचाप उसको शांति की पोटली पकड़ा देते हैं? मैं क्या करूं, वो आदमी आया, उसने मुझे ऐसे बोला और मेरी तो शांति ही चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? हमें अपने बाप की दी हुई प्रॉपर्टी को संभालना ही नहीं आया, उसका हमको नशा ही नहीं है, उसकी हमको कदर ही नहीं है। कोई आया और ले गया, शांति भी ले गया, प्रेम भी ले गया, पवित्रता भी ले गया, हमारी खुशी भी ले गया, तो किसका दोष, ले जाने वाले का या देने वाले का? अब वहां तो कोई चोर ले जाए तो लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, या आप क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहती हैं, मैं बच्चों को देता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन बच्चों का काम है उसको संभाल के रखना। देखो लौकिक दुनिया में लोगों को पैसे से कितना प्यार होता है, मुट्ठी में पैसा पकड़ा हुआ है, मान लो गिर गए, ठोकर लग गई, तो घुटने में चोट लगी वो बाद में देखेंगे, मुट्ठी में पैसा है कि नहीं है वो पहले देखेंगे। ज्यादा प्यार किससे है? पैसे से है ना, मुट्ठी का पैसा सुरक्षित है, कोई बात नहीं है, चोट तो ठीक हो जाएगी, पैसा नहीं जाना चाहिए, कितना प्यार है पैसे से। क्या हमको इतना प्यार है शांति से? कोई बात नहीं है, कुछ भी हो गया होने दो, शांति नहीं जानी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, बात ऊपर नीचे हो गई, जाने दो, वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रेम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की दी हुई अमूल्य सौगात है। मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ, मेरा प्रेम बना रहना चाहिए। क्या हमको इतनी कदर है भगवान की दी हुई प्रॉपर्टी की? तो ये है पिता का संबंध, उसकी संपत्ति का नशा। और जब इस संपत्ति के नशे में जाते हैं, बाबा कहता है आपके चेहरे और चलन से हमेशा खुशी दिखनी चाहिए, रूहानियत झलकनी चाहिए। बाबा ने कहा अगर दुनिया में आप खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा? दुनिया में तो दुख और अशांति बढ़ रहा है, तो आपका चेहरा ऐसा हो कि आपको देख करके दूसरे को भी खुशी आ जाए, मुस्कान आ जाए। तो हमें खुशी किस बात की है? कोई पूछे आपको क्या मिला? भगवान मिला। अच्छा भगवान से क्या मिला? भगवान से सारी प्रॉपर्टी मिली, उसकी खुशी है, उसका नजा है, उस खुशी में हम मुस्कुरा रहे हैं। भगवान से ये भी मिला, ये भी मिला, ऐसी चीज मिली कोई बंटवारा ना कर सके, कोई छीन ना सके, कोई चुरा ना सके। तो ये पिता के साथ हमारा संबंध है, हमें खुशी है, नशा है। कुछ दिन पहले एक मुख्यमंत्री का बेटा यहाँ आबू रोड में आया था, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा था, तो अखबार में न्यूज आई कि उसने आते ही सारी गवर्नमेंट को नचा दिया, मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए और इतने मुझे अंगरक्षक चाहिए और इतने मुझे सेवाधारी चाहिए और इतना मेरे को ये चाहिए। आते ही उसने सबको, नशा था ना, मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, मैं कोई मामूली थोड़े हूँ। अब वो वाला नशा तो क्या करता है, उल्टे काम करवा देता है, क्योंकि उस नशे में रूहानियत नहीं होती है ना, वो तो देहबान का नशा होता है, लेकिन नशा वहां भी चढ़ता है और वो उल्टे काम करवाता है, और नशा यहां भी चढ़ता है। हम सारे विश्व के मालिक के बालक हैं और ये नशा हमसे अच्छे काम करवाता है, ऊंचे काम करवाता है, महान काम करवाता है। कैसे काम करवाता है? जब नशा चढ़ता है कि मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मेरा बाप कितनों पे परोपकार करता है तो मैं भी कितनों पे करूँ। जैसे बाबा आते हैं, हम सब बाबा से मिलते हैं, बाबा एक दृष्टि देते हैं और हम कितने बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। तो हमको नशा चढ़ता है कि जब हमारे पिता की एक नज़र से इतने बच्चे अशरीरी हो जाते हैं तो हमारी नज़र भी ऐसी होनी चाहिए। तो ये कैसा नशा है? ये कल्याणकारी नशा है। मेरी नज़र से भी इतनी आत्माओं को सुकून मिले। बाबा ने एक शब्द बोला और कितनों का जीवन बदल गया। तो मैं भी अपने बाप जैसा परोपकारी बनूं, मेरे मुख से भी ऐसा शब्द निकले जो अनेकों का जीवन बदल जाए। कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा अचल अडोल ऐसे बैठे रहते हैं, जैसे हॉल में बैठे सारे बच्चों को बाबा गोदी में बिठाए हुए हैं, जैसे माँ होती है ना बच्चों को सामने बिठा लेती है और एकदम निश्चिंत बैठी रहती है अथॉरिटी बन के, सारे बच्चे जैसे गोदी में ही हैं, निश्चिंत है, सब सुरक्षित है, तो बाबा ऐसे बैठे रहते। तो क्या हमारी उपस्थिति भी मनुष्य आत्माओं को इतना निश्चिंत कर सकती है? जब हमारे पिता की उपस्थिति हमें इतना निश्चिंत कर देती है, उस समय हमें कोई समाचार सुनाए दुनिया में क्या हो गया, हमको हम कान लगाएंगे, हम कहेंगे होने दो, हमारा बाप हमारे सामने बैठा है, कुछ नहीं हो सकता। तो हमको भी नशा चढ़ता है, लेकिन ये सुखकारी नशा है, कुछ देना सिखाता है, भला करना सिखाता है। ऐसे ही बाबा हमारा टीचर है। पिता और टीचर में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बच्चा पिता से नहीं डरता, लेकिन टीचर से डरता है। पिता की बात को ठीक नहीं मानता, लेकिन टीचर की बात को ठीक मानता है। मान लीजिए बच्चा स्कूल में पढ़ के आया और एक शब्द है वो मैडम ने कुछ और बताया, अब घर में माँ कहेगी नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होता है, तो क्या बोलेगा? मेरी मैडम ने ऐसे बताया था, मेरी मैडम जो कहती है ना वही ठीक है, भले माँ ठीक भी बताती होगी तो भी मेरी मैडम ने कहा है। तो ज्यादा विश्वास किस पे है? मैडम पे, टीचर पे। बाप के साथ जिद करेगा, मेरे को खिलौना ला दो, मेरे को बाजार घुमा के ला दो, लेकिन टीचर के आते ही स्कूल में टीचर के सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठेगा, जिद नहीं करेगा, रोएगा नहीं, एकदम डिसिप्लिन में बैठेगा। पिता के सामने तो टेढ़ा मेढ़ा भी बैठेगा, पांव भी फैला लेगा। तो भगवान के साथ हमारा जो टीचर का संबंध है वो हमें अनुशासन सिखाता है, नियमबद्धता सिखाता है। और टीचर हमें पढ़ाता है, वो जो पढ़ाता है वो सत्य पढ़ाता है। हम गॉड के स्टूडेंट हैं, जानी जानन हार के स्टूडेंट हैं, वो हमें जानी जानन हार बना रहा है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहा है। कितनी दूर से हमें पढ़ाने आता है और कैसी नॉलेज पढ़ाता है, ना उसकी कोई किताब है, ना कोई लिखत है, ना आज तक किसी ने पढ़ाई है, ना कोई किताब हाथ में उठाता है। दुनिया के जितने भी टीचर हैं किताब लेके पढ़ाते हैं, या घर में किताब में से लेक्चर को रट्टा मार के आते हैं और कॉलेज में आके पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा टीचर सुप्रीम है, कोई किताब नहीं पढ़ता, किसी गुरु से नहीं पढ़ा, उसका कोई टीचर नहीं है। वो ऐसा टीचर है जो सर्वज्ञ है। दुनिया में जितने भी टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो जब परीक्षा होती है तो परीक्षा का एक नियम होता है, परीक्षा की डेट फिक्स होती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि प्रश्न क्या आएगा। और यहाँ हमारा टीचर ऐसा है जिसने पहले दिन ही हमको प्रश्न बता दिया, परीक्षा में कौन सा प्रश्न आएगा बता दिया ना, लेकिन कब आएगा समय नहीं बताया। इसलिए हमारा टीचर कहता है सब कुछ अचानक होगा। उस परीक्षा में ऐसे नहीं कहा जाता कि परीक्षा अचानक होगी, पहले से डेट आ जाती है। यहाँ परीक्षा अचानक होती है, सवाल मालूम रहता है, कौन सा सवाल आएगा, एक सेकंड में अशरीरी बनना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना। दुनिया में कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता जो दो तीन क्लास को इकट्ठा पढ़ा सके, एक क्लास को पढ़ाएगा तो दूसरी को पढ़ा नहीं सकता, एक बार में एक ही क्लास को पढ़ा सकता है। लेकिन ये टीचर कैसा है, 75 साल वाले भी उसी क्लास में, एक साल वाला भी उसी क्लास में, और जो पहली बार आया है बिल्कुल नया है, जिनको बाबा ने कहा VIP, वो भी उसी क्लास में। तीनों से पूछो कि बाबा की मुरली सुन के कैसे कैसा लगा, तीनों कहेंगे हम तृप्त हो गए। माना सबके सब तृप्त, इतनी वैरायटी बच्चे और एक छोटा सा पाठ और उसमें सबको सारा ज्ञान मिल गया, कमाल है ना। उस पढ़ाई में मिलता क्या है, लोग 16 साल पढ़ते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं और इतनी सारी पढ़ाई पढ़ के इतना बेचारे वजन उठा उठा के ले जाते हैं, थैले भर भर के ले जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन मिलता क्या है। कई बार तो हम देखते हैं एमए पढ़े हुए लोग भी कहते हैं हमको कोई पीएन भी रख लेना तो भी हम रहने को तैयार है, क्योंकि जो सरकारी पीएन होता है ना उसको भी आजकल 8-10 हज़ार मिल जाता है। तो बेचारा पढ़ा है एमए लेकिन चपरासी की नौकरी के लिए भी तरस रहा है। तो क्या मिला इतना पढ़ करके। और बाबा ने इन वीआईपीज को एक गारंटी दी कि अगर आप रोज फोन पे भी मुरली सुनेंगे ना तो बाबा आपको गारंटी देता है। क्या गारंटी दी, 21 जन्म तन मन धन भरपूर मिलेगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। केवल फोन पे जरा सी मुरली सुनने का इतना परिणाम, और वहां 16 बरस पड़े फिर भी रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे मोहताज। तो ये कैसा टीचर है जिसकी थोड़ी सी पढ़ाई हमें 21 जन्म तो डायरेक्ट और बाकी 84 जन्म इनडायरेक्ट वे में भरपूर रखेगी। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है, कितनी भरपूर करने वाली पढ़ाई है। और खर्चा क्या है, कुछ नहीं, जो फालतू की चीजें हैं वो फीस में दे दो और बदले में अमूल्य हीरे मोती ले लो। फिर बाबा हमारा क्या है, सतगुरु है, पिता टीचर और सतगुरु तीनों में अंतर है। पिता के आगे बच्चा लाड़कोड़ करता है, अलबेला बनता है, जिद करता है, चीजें मांगता है, गोदी में बैठ जाता है, बाल पकड़ लेता है, कंधे पर चढ़ जाता है, जेब में से पैसे निकाल लेता है। पिता के साथ बच्चे का ऐसा संबंध है। टीचर के आगे थोड़ा डरता है, डिसिप्लिन में बैठेगा, जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलेगा, जिद नहीं करेगा, उसकी आँख के इशारे को समझेगा, उसके कहे हुए बात को करेगा। और गुरु कहती हैं घोड़े का गिरा संभल सकता है लेकिन गुरु की नज़रों का गिरा हुआ संभल नहीं सकता। तो गुरु का जो संबंध है वो और भी थोड़ा सा कड़ा है, इसलिए लोग गुरु करते हैं बुढ़ापे में, तब तक अकल आ जाती है, गुरु के साथ कैसे चलना होता है। बचपन में गुरु कर लिया बच्चे को तो अभी पिता के साथ ही चलना नहीं आया, टीचर के साथ ही चलना नहीं आया, तो गुरु की ऊंची ऊंची शिक्षाओं को क्या समझेगा। तो जब अनुभवी बन गए तब जाके बुढ़ापे में, ताकि गुरु कुछ कहे तो उसको मान सके, उसको इज्जत दे सके। गुरु की आज्ञा सिर माथे, गुरु ने जो कहा उसमें क्यों क्या नहीं है, गुरु ने जो कहा उसको तुरंत करना है, उसमें देरी नहीं है। और कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, अगर सतगुरु की निंदा कर दी तो उसको तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो लोग भक्ति मार्ग में ऐसा कहते हैं कि फिर उसको भगवान भी शरण नहीं देगा। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा की निंदा करवाई तो सतयुग में ठोर नहीं मिलेगी। तो गुरु के साथ, सतगुरु के साथ बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। सतगुरु ने जो कहा उसमें अपनी मनमत मिलावट नहीं करनी है, सतगुरु ने जो कहा उसको तुरंत फॉलो करना है, ज्यों का त्यों फॉलो करना है। और सतगुरु ने जो कहा उसके विरुद्ध चल करके सतगुरु की ग्लानी नहीं करवानी है। अगर उसकी श्रीमत का उल्लंघन किया और किसी ने ये कह दिया कि क्या तुम्हारे सतगुरु ने यही सिखाया, तो ये ग्लानी किसकी हो गई, इस सतगुरु की ग्लानी हो गई। इसलिए मुझे नियम मर्यादा धारणा जो बाबा ने सिखाई है उस पे पूरा चलना है। गुरु की नजर से निहाल होने की बात कही जाती है। गुरु लंबी चौड़ी बात न सिखाए, केवल एक प्यार भरी नजर डाल दे तो कहते हैं कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो अगर सतगुरु की एक दृष्टि मिल जाए तो पाप कट गए, मनचाहा फल मिल गया। तो बाबा भी कहते हैं कि शुरू शुरू में बाबा ने बाप का पार्ट प्ले किया, फिर बाबा ने टीचर का पार्ट प्ले किया, और लास्ट का जो पार्ट है बाबा का वो सतगुरु का पार्ट है। एक नज़र से निहाल करेंगे और बहुत सारी आत्माएं, जैसे बाबा ने इस मुरली में कहा ना कि अभी वर्षा लेने वालों की क्यों लगनी चाहिए, तो वर्षा लेने वालों की जब क्यों लगेगी तो क्या होगा? एक नज़र आएगी, बच्चे निहाल होंगे और उस नज़र से ही वर्षे का अनुभव होगा, मना जो उस आत्मा को चाहिए वो उसको मिलेगा। हम बच्चों ने तो बाबा से बहुत पालना ली, लेकिन लास्ट वालों को तो बाबा नज़र से निहाल करेंगे और उसमें वो तृप्त हो जाएंगे। ऐसा उनको ख्याल नहीं आएगा कि हमको नहीं मिला, यही भगवान की कमाल है। उस एक नज़र में इतना बल है कि सबको तृप्ति अनुभव होगी। फिर भगवान के साथ हमारा मित्र का संबंध है, बंधु सखा, सखा है भगवान हमारा। भक्ति मार्ग में कई मिसाल आते हैं, कई लोगों ने कईयों को मित्र बनाया, लेकिन सबसे सुंदर मित्रता है भगवान के साथ, यादगार मित्रता। एक तो रामायण में प्रसंग आता है कि जब सीता की खोज में भगवान गए, वो तो राम को दिखाते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये यादगार ग्रंथ है, आप सब आत्माएं सीताएं हैं और मैं इस बेहद के जंगल में आया हूँ आपको ढूंढने के लिए। तो कहते हैं सुग्रीव मिले भगवान को, सुग्रीव के साथ भगवान ने मित्रता कर ली। अब दोनों का दुख एक समान था, सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई ने हड़प लिया था और उधर सीता को रावण ले गया था, तो दोनों का दुख एक समान था, है भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाते। तो दोनों में मित्रता हो गई। तो सुग्रीव ने कहा हम ऐसा करते हैं, एक समझौता करते हैं, आप मेरी पत्नी वापस दिलवाने में मेरी मदद करो और मैं आपकी पत्नी वापस दिलवाने में आपकी मदद करता हूँ। तब भगवान ने कहा कि समझौता तो राजनीति में होता है और हमारा आपस में मिलना ये कोई राजनैतिक संबंध नहीं, हम तो मित्र हैं। अब राजनैतिक समझौते में और मित्रता में क्या अंतर है? राजनैतिक समझौते में तो बराबरी होती है, तुम हमें इस व्यापार में मदद करो हम तुमको इस व्यापार में मदद करेंगे, तुम हमें अपने इस क्षेत्र में घुसने दो हम तुमको अपने इस क्षेत्र में घुसने देंगे, वो तो बराबरी का नाता है ना। लेकिन मित्रता में, मित्रता किसको कहते? मित्रता में गिनती नहीं होती, मित्रता में बराबरी नहीं होती, मित्रता में छोटे बड़े का भेद नहीं होता, मित्रता में कौन राजा कौन प्रजा ये भी नहीं देखा जाता, मित्र माना मित्र। और मित्रता में मदद की जाती है निस्वार्थ भाव से, मित्र के लिए कुछ भी किया जा सकता है, मित्रता उसको कहते, गिनती नहीं की जाती। तब भगवान ने कहा कि सुग्रीव मैं कोई राजा के नाते तुमसे समझौता नहीं कर रहा हूं, मैं मित्र हूं और इसलिए इसमें कोई शर्त नहीं है, ये बिना शर्त की मित्रता है। तुम मेरे लिए कुछ करो या ना करो, लेकिन मित्र के नाते मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। और कहते हैं भगवान ने पहले सुग्रीव के लिए किया, पहले सुग्रीव को राजा बनाया और उसके बाद दिखाते हैं कि सुग्रीव भूल गया, खो गया, अपनी राजाई के नशे में। बाद में लक्ष्मण ने उसको याद कराया कि तुमने क्या भगवान से वायदा किया था, और फिर वो टीम बना करके भेजा और फिर सीता की खोज हुई। तो कई बार हम भी ऐसे ही हैं, भगवान को कहते हैं ना, भगवान इस बिजनेस में फायदा करा दे, उसके बाद मैं इतना आपके लिए कर दूंगा। लेकिन भगवान ने कभी कहा क्या ऐसा करो तो ऐसा होगा? नहीं ना। इसलिए बिना शर्त के करेंगे तो फल अधिक मिलेगा। हमने शर्त लगाई और हमें नहीं मिला, फिर विश्वास ही उठ जाएगा, देखो भगवान ने तो मदद ही नहीं की। लेकिन भगवान ने कब कहा कि तुम शर्त लगाओगे तो मैं मदद करूंगा? मैं तो बिना शर्त के मदद कर रहा हूं, लेकिन विधि एक्यूरेट चाहिए। मैं जिस विधि से कहता हूं उस विधि से करो, विधि से सिद्धि मिलेगी, शर्त से सिद्धि नहीं मिलेगी। तो हम बच्चे भी कई बार सुग्रीव की तरह करते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है उसके बाद ढीले हो जाते हैं। फिर कोई आके याद कराता है कि भगवान से क्या वायदा किया था, सेवा का वायदा किया था, सेवा करो। दूसरी मित्रता दिखाते हैं कृष्ण की और सुदामा की, तो उसमें भी क्या दिखाते हैं, एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ एक बहुत ही साधारण आत्मा, सांसारिक रीति से भी बिल्कुल साधारण आत्मा। लेकिन भगवान ने मित्रता के आगे ना उसके धन को देखा, ना उसकी साधारणता को देखा, और क्या किया? कहते हैं जब सुदामा भगवान के महल में प्रवेश हुआ तो भगवान ने अपने आंसुओं के जल से उसके पांव धोए। धोने के लिए तो जल था, लेकिन भगवान ने आंसुओं के जल से पांव धोए, उसकी जो एड़ियां फट गई थी चल चल के, तो उनको देख करके बहुत अफसोस हुआ कि मेरे मित्र की एड़ियां ऐसी फट गई। और उसको इतने बढ़िया रेशमी कपड़े, अपना भी कपड़ा उतार करके उसको पहना दिया, उसके बाद उसको बहुत नरम बिस्तर पे सुलाया। दासी आई, वो जो सेवक थे वो आए पंखा झलने के लिए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से इसको पंखा झलूंगा। तो सुदामा सोया और भगवान ने पंखा झला। उसको कितने प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से खिलाए, और जिस गद्दी पर वो खुद बैठे थे उस गद्दी पर बाजू में बिठाया। वो तो बेचारा डर के मारे भगवान के चरणों में बैठ रहा था, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम मेरे मित्र हो, और मित्र मित्र बराबरी का हकदार होता है, बाजू में बिठाया। तो कितनी सेवा की। अब ये सारी यादगारी है तो संगम युग की ना, साकार में भी हम सब ने बाबा के चरित्र सुने हैं, कैसे गरीब गरीब बच्चों को बाबा ने कैसे सिर आंखों पे बिठाया, बाबा ने हाथों से सेवा की। और आज भी हम देखते हैं, अब बाबा ने एक एक बच्चे से पूछा कि किसी को रहने की कोई असुविधा तो नहीं है, किसमें शक्ति है कि इतनी भरी सभा में कोई पूछ सके, दुनिया में कितना कुछ लोगों के पास सुख सुविधा के साधन है, लेकिन इतना कोई पूछ के तो दिखाए? भले कोई कितना भी साधारण बच्चा है, लेकिन एक एक बच्चे को जैसे बाबा अपने दिल में रखे हुए हैं, लगता है ये सारा मधुबनी बाबा का दिल है। अब मधुबन में नहीं बैठे हैं, लेकिन बाबा के दिल में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं इतना सुख मिलता है। तो इतने बड़े दिल वाले बाबा का इतना बड़ा दिल है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो पहली बार आया है, चाहे उसको थोड़ा ज्ञान है, चाहे वो थोड़ा पढ़ा हुआ है, कैसा भी है, लेकिन भगवान के दिल में उसको उतनी जगह मिलती है जितनी किसी और को मिलती है। तो ये है मित्र जो हमें बराबरी का दर्जा देता है, चरणों का दास नहीं बनाता लेकिन दिल में समाता है, अपने से भी ऊंचा हमको उठाता है। तो प्यारे बाबा की ये संगम युग की मित्रता कितनी सुखदाई है। कहाँ भगवान, कहाँ हम, कहाँ सर्वोच्च शक्ति, और कहाँ 84 जन्मों में शक्ति खो करके बिल्कुल जीरो बल्ब जितनी आत्मा, और कहाँ वो लाइट हाउस, माइट हाउस। लेकिन फिर भी बाबा ऐसे बच्चों को भी अपनी बाजू में, अपने दिल में बिठा लेता है, इतना ऊंचा स्थान देता है। तो ये मित्रता है जो यादगार बन करके और फिर भक्ति में भक्तों को कितना रिझाती है। जगह जगह भारत में यादगारें बनी हुई हैं, भगवान ने सुदामा के साथ क्या किया, भगवान ने सुदामा के साथ क्या किया। लोग उस मित्रता के गीत गाते हैं, उसको देख देख के हर्षित होते हैं। तो ये इस समय की यादगार भक्ति में चलेगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी मित्रता दिखाती हैं, लेकिन वो मित्रता कोई सुखदाई नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य की और द्रुपद की मित्रता दिखाते, एक मनुष्य की मनुष्य के साथ मित्रता है ना, उस मित्रता में क्या है। एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, उसके बाद द्रोणाचार्य ने बदला लिया। बदले की आग में फिर द्रुपद ने एक ऐसा बच्चा मांगा, फिर उस बच्चे ने द्रोणाचार्य को मारा, फिर द्रोणाचार्य के बेटे को फिर बदले की आग आई, उसके बाद फिर उसने फिर बदला लिया। तो ये कैसी मित्रता है मनुष्य की मनुष्य के साथ। कहीं अपमान है, कहीं बदला है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी बदला लेने में लगी हुई है। तो दुनिया में जो मनुष्य की मनुष्य से मित्रता होती है, और अगर उसमें निस्वार्थ भाव नहीं है तो वो दुश्मनी में बदल जाती है, और फिर उस दुश्मनी का परिणाम पीढ़ियों तक चलता रहता है। इसी तरह से एक मित्रता दुर्योधन की और कर्ण की दिखाते हैं। अब कर्ण है तो अच्छा, लेकिन दुर्योधन के एहसान से दबा हुआ है, और दुर्योधन कितना भी पाप कर्म उससे करवा ले वो करने को तैयार है। एक ऐसी भी मित्रता होती है, लोग अपने मित्र के एहसान से इतना दब जाते हैं कि वो उसके कहने से कोई भी पाप कर्म करने को तैयार हो जाते हैं। अब ये मित्रता भी किसी काम की नहीं होती है। अपनी अंतरात्मा को ही गिरवी रख दिया, फिर बचा क्या? अच्छाई बुराई का भेद ही खत्म हो गया। भेद है भी तो भी बुराई के अधीन है मित्रता के एहसान में, तो ऐसी मित्रता भी किसी काम की नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे अपना मित्र बनाओ, अपने दिल की बात मुझे सुनाओ, मेरे से समाधान मांगो, मैं मदद करूंगा और बदले में कुछ मांगूंगा भी नहीं, किसी दूसरे को लीक भी नहीं करूंगा। तो ये संगम युग कितना प्यारा युग है, जहाँ भगवान हमें सखा के रूप में सच्चे प्यार की अनुभूति करवाते हैं। और फिर भगवान के साथ हमारा कौन सा संबंध है, पुत्र का संबंध है। भगवान हमारा अति प्रिय पुत्र है। भगवान कहते हैं, बच्चे मुझे अपना बेटा बनाओ तो 21 जन्म में बहुत सेवा करूंगा। अभी भी बहुत भाई बहन बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं कि हमने भगवान को बेटा बनाया और हमें कितना सुख मिला। कुछ समय पहले हैदराबाद की एक माता ने हमारे पास अनुभव लिख के भेजा था कि मेरा बेटा अमेरिका में अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। हमारे पास समाचार आया, एक बेटा, मैं और बच्चे के पिताजी, हम तीन यहाँ इंडिया में और बेटा वहाँ। अब समाचार आया तो अमेरिका इतना नज़दीक तो नहीं है ना कि भाई फटाफट पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही समाचार आया, मैं बाबा के कमरे में गई। मैंने बाबा को कहा, बाबा आप हमेशा कहते हो कि मुझे अपना बेटा बना लो, और मैं तो जब से ज्ञान में आई हूँ आप मेरे सबसे बड़े बेटे हैं, मैंने आपको सबसे बड़ा बेटा माना है और ये दो आपके छोटे भाई हैं। बाबा मैं तो दो हाथ वाली हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उड़ के अमेरिका जा सकूँ, पर आप तो हजार भुजाओं वाले हो, आप तो एक सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। बाबा आप मेरे बड़े बेटे हो, आप अपने छोटे भाई को जा कर के देखो कि अमेरिका में उसके साथ क्या हुआ है और आप उसकी मदद करो बाबा। तो मैं बाबा के कमरे में बैठी बैठी बाबा को ये सब कहती रही और मेरे को जरा भी चिंता नहीं हुई, ऐसे लगा कि जैसे सचमुच बाबा मेरी बात सुन रहा है और बाबा मेरे बच्चे की देखभाल कर रहा है। फिर अगले दिन फोन आया कि बच्चे की जेब में, वो बच्चा कभी कभी आश्रम जाता था, बच्चे की जेब में अमेरिका के किसी सेंटर का एड्रेस कार्ड था, तो उसके दोस्तों ने उस कार्ड को देख करके उसको आश्रम पे पहुंचा दिया। और फिर आश्रम में जो बहन निमित्त थी उसने उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और वही आश्रम के ही भाई बहन उसकी सेवा में लगे पड़े हैं, हॉस्पिटल में सब उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये बहन ने कोशिश की कि चलो अब वीजा वीजा बना के अमेरिका जाएं, लेकिन दिवाली और दशहरे की छुट्टियां थी तो सब ऑफिसेज बंद थे, इसलिए इतना जल्दी वो वीजा बनने का और वो सब भी नहीं हो पाया। लेकिन बराबर फोन आता रहा कि आप निश्चिंत रहो, अब इतनी रिकवरी हो गई है, अब इतनी रिकवरी हो गई है, और हमें वीजा लेके अमेरिका पहुंचने में 2 मास लग गए। अब 2 मास बाद जब हम वहां पहुंचे तो बच्चा तो पूरी तरह ठीक हो गया था, हमको पता भी नहीं पड़ा कि इसको कहाँ चोट लगी थी, लेकिन चोट के निशान चेहरे पे थोड़े बहुत थे, टांके वांके लगते हैं तो निशान रह जाते हैं ना। तो मैं फिर बाबा के पास गई, मैंने कहा बाबा आप तो इतने सुंदर हो और ये मेरा बच्चा भी बड़ा सुंदर था, लेकिन अब इसका चेहरा बड़ा भद्दा लगता है। बाबा आपका भाई, आपका छोटा भाई कितना भद्दा लगता है, बाबा ये भद्दापन भी दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने चिंता नहीं की, बस बाबा को कह दिया। उसके बाद किसी ने हमको बताया कि अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहाँ फेस को भी ठीक करने का कुछ है, कोई होगी जगह, वहाँ उसको ले गए, 1-2 मास वहाँ ट्रीटमेंट चली और फेस के जो धब्बे थे वो भी ठीक हो गए और मेरा बच्चा जैसा पहले था वैसा ही बन गया। लेकिन किसकी बदौलत? बड़े बच्चे की बदौलत। कौन है बड़ा बच्चा? श्री बाबा है ना सबसे बड़ा बेटा। तो बाबा को बेटा बनाएंगे तो आपके बच्चों की भी संभाल करेगा, बड़ा भाई तो पिता समान होता है लौकिक दुनिया में कहते हैं ना, आपकी भी संभाल करेगा, बच्चों की भी संभाल करेगा, फायदा ही फायदा है। और प्रॉपर्टी भी नहीं मांगता वो, ऐसा बच्चा है, सेवा ही सेवा करता है। मांगता है कभी कुछ? दुनिया वाले बच्चे तो प्रॉपर्टी पहले मांगते हैं, सेवा करें या ना करें, लेकिन बाबा सेवा करता है, मांगता कुछ भी नहीं है, कितना प्यारा बेटा है। लौकिक बच्चे तो कहीं पहुंच भी नहीं पाते, दो हाथ वाले हैं ना, लेकिन ये तो हजार भुजा वाला, आप बुलाओगे तुरंत पहुंच जाएगा। लौकिक बच्चों की तो अपनी समस्याएं ही बहुत सारी हैं, आपकी क्या सुनेंगे, लेकिन ये बच्चा तो सर्व समस्याओं से मुक्त है और मुक्त करने वाला है। इसलिए संगम युग में भगवान हम सबका बच्चा बन गया, सदा हमारे साथ है और सदा ही हमारी सेवा करने के लिए तत्पर है। तो ये भी बाबा से हमारा बहुत प्यारा संबंध है। फिर बाबा हमारा भाई भी हैं, बाबा हमारा रक्षक भी हैं, बाबा हमारा साजन भी हैं। बाबा कहता है मैं आत्मा के 16 श्रृंगार करता हूँ। दुनिया में तो आजकल क्या श्रृंगार है, आज श्रृंगार करेंगे कल श्रृंगार उतर जाएगा, लेकिन बाबा जो श्रृंगार करता है वो कितने जन्म चलता है? 21 जन्म। भक्ति मार्ग में मीरा की बात सुनाती हैं, मीरा ने कहा कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो जन्मे और मर जाए, मुझे तो सांवरिया पति चाहिए जो मेरा चुड़ला अमर हो जाए। और कहते हैं कि जब उसके पति ने शरीर छोड़ा तो जैसे लौकिक में रसम होती है, मीरा को लोगों ने कहा कि तुम अपनी चूड़ियां तोड़ दो, तुम्हारा पति मर गया। तो मीरा ने कहा कि मेरा पति तो अमर है, वो कभी मरता ही नहीं है, इसलिए मैं काहे को चूड़ियां तोड़ दूं, काहे को श्रृंगार उतार दूं, मैंने श्रृंगार उसके लिए किया था। ऐसे बताते हैं, मना उसको नशा था कि भगवान मेरा साजन है। बाद में तो बेचारी को लोकलाज वश सब उतारना पड़ा और भगवा कपड़े पहने, ऐसा उसकी जीवन कहानी में आता है। लेकिन हमारा श्रृंगार तो कोई दिखने वाला स्थूल श्रृंगार नहीं है, ये आत्मा का श्रृंगार है, गुणों का श्रृंगार है, त्याग और तपस्या का श्रृंगार है, आत्मा को गोरा बनाने वाला, हीरे की तरह से चमकाने वाला श्रृंगार है। बाबा रोज पॉलिश लगाता है, कुछ ना कुछ हीरे जड़ता है, कुछ और नई चीज आत्मा को पहनाता है। देखो जब हम बाबा के आए तब हमारी चमक, और बाबा रोज श्रृंगार करते करते आज हमारी चमक कितनी बढ़ गई है, और धीरे धीरे यह आत्मा पूर्णमासी के चंद्रमा जैसी बन जाएगी, 16 क्लास संपूर्ण। तो ऐसा श्रृंगार करने वाला भगवान हमें मिला, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। और बाबा हमारा भाई भी है, लौकिक दुनिया में लोग भाई को राखी बांधते हैं, किस लिए? हमारी रक्षा करेगा। अब लौकिक दुनिया में तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को भाई होता भी नहीं है, और भाई छोटा होता है, बहन बड़ी होती है, और कई बार भाई गरीब होता है, बहन अमीर होती है। बहन भारत में बैठी है, भाई परदेश में बैठा है, कौन किसकी रक्षा करेगा? लेकिन शिव बाबा तो सचमुच हर आत्मा की मान सम्मान की रक्षा करता है। कहते हैं ना, द्रौपदी पर जब भीड़ पड़ी तो भगवान ने उसके मान सम्मान की रक्षा की। द्रौपदी ने भी भगवान को भाई बनाया हुआ था। तो भगवान हमारा भाई है, हमारा साथी है, हर मुसीबत में हमारा रक्षक है। हमारी हर भीड़ में हमको काम आने वाला है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला है, हमारा रक्षक है। तो भगवान के साथ हमारे सर्व संबंध है। इन संबंधों के आधार पर अब हमारे दिल में कौन है? पिता याद आए तो भगवान पिता है, माता याद आए तो भगवान ही माता है, सखा याद आए तो भगवान ही सखा है। तो दिल में कौन है? सबकी यादें दिल में बसी रहती थी ना ज्ञान काल में, अब ये सारी यादें भगवान से जुड़ गई, तो अब दिल में कौन है? भगवान है। और भगवान के दिल में कौन है? क्योंकि जो बच्चा सर्व संबंधों से याद करता है वो भगवान के दिल में है, भगवान उसके दिल में है, और वो बच्चा भगवान के दिल में है। तो हम सब कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? भगवान के दिल में रहते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे दिल में रहते हैं। ओम शांति।
धरती हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ अपने पाए, हम पर तुम्हारे छाए, हम पर तुम्हारे छाए। धरती हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ अपने पाए, हम पर तुम्हारे छाए, हम पर तुम्हारे छाए। मधुबन के मूर्तियों में मिलता तेरा नजारा, मधुबन के मूर्तियों में मिलता तेरा नजारा, हर गोपी संग जैसे दिखता है शाम प्यारा, बन कर भी देही बाबा बनना हमें सिखाई, रहते कहीं भी। धरती हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ अपने पाए, हम पर तुम्हारे छाए, हम पर तुम्हारे छाए, शुभ भावनाएं रखना हमको बता रहे हो, शुभ भावनाएं रखना हमको बता रहे हो, शुभ कामना की सेवा करना सिखा रहे हो, नैनों के सामने हो, नजरों में हो समाई, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ अपने पाए, हम पर तुम्हारे छाए, हम पर तुम्हारे छाए, धरती हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ अपने पाए, हम पर तुम्हारे छाए, हम पर तुम्हारे छाए।
ओम शांति।